416 2000
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktruckloop.com।
पंजाब टीवी पेश करते ने कनाडा डे मेला 2022 जिस विच आ रहे ने नछत्तर किल, जस बाजवा, सिंगा, रुपिंदर हांडा, हर्फ चीमा, लवली निर्माण, प्रवीण पाटा, सत्कार संधु, खान साहब, द लैंडर्स अते विरासत संधु। पहली जुलाई नू 150 क्वीन स्ट्रीट बोल्टन विखे कनाडा डे मेला। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, आओ ते आनंद माणो। जानकारी लई कॉल करो 416-312-1111। कनाडा डे मेला पहली जुलाई नू।
ओ माया मेहंदी रोका या ब्याह दा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
स्वीट महल वालियां दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 तो लेके 700 तक दी कैपेसिटी ते खाना उही लाजवाब। स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, कन्वीनिएंटली लोकेटेड इन बॉर्न। हुणे कॉल करो अते अपनियां पार्टियां बुक कराओ 416-433-9191, 416-433-9191।
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
Team 4 Entertainment and Trust 99 Logistics present Rewind Tour. Alka Yagnik, Udit Narayan and Kumar Sanu, Saturday, July 2nd at CAA Center Brampton, in association with Trans Expert, Autobahn, Roadlink, RPD 24, Magnus Furniture and G Media Group. For tickets, visit ticketmaster.ca or call 905-793-1234.
नागहानी और परेशानी से बचना सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आप घर के तमाम कमरे और सोने के तमाम इलाकों से बाहर घर के हर लेवल पर वर्किंग स्मोक अलार्म्स हों। आज और हर महीने घर के तमाम स्मोक अलार्म्स यानी धुएं के अलार्म्स की जांच करें। अलार्म्स पर लगे बटन को दबाकर चेक करें कि बीप आ रही है कि नहीं, वो काम कर रहा है कि नहीं। आपकी एहतियात और स्मोक अलार्म्स जान बचाते हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की तरफ से एक पैगाम।
जिससे मोहब्बत करनी पड़े उससे कभी मोहब्बत न करो।
पंचायत की भी यही मर्जी है कि उनके सामने आप हलफ उठाओ कि आप लंदन नहीं जाओगे।
मैं हलफ देता हूँ, मैं लंदन नहीं जाऊंगा।
Safwan Iqbal Films, ARY Films and Six Sigma Plus presents the much awaited film London Nahi Jaunga, releasing on Friday 8 July in cinemas near you, a rising star entertainment release.
इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज में नए तालीमी साल के लिए फुल टाइम हिव्स और संडे स्कूल के लिए एडमिशन का आगाज हो चुका है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज रीजन के टॉप रेटेड एलिमेंट्री स्कूलों में से एक है, जहां ऑन्टेरियो सिलेबस के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है, जिसमें इस्लामिक स्टडीज, अरबी और कुरान शामिल है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज में ब्लेंडेड करिकुलम, क्वालिफाइड स्टाफ, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, जिमनेजियम, लाइब्रेरी, साइंस लैब जैसी खसूसियात मौजूद है। के लिए अभी कॉल कीजिए 519-740-6855,
चलो कहीं दूर ये समा छोड़ के।
अरे भाई कहाँ चल दिए?
लराची बाई नोमान एजाज, जहाँ मिलेंगे आपको पाकिस्तानी ऑथेंटिक लाहौरी खाने।
सच?
जी हाँ, गोल गप्पे, पापड़ी चाट से लेकर बारबेक्यू आइटम्स, बिरयानी, लाहौरी चिकन और गोट कढ़ाई, बीफ नहारी, चना मसाला और हलीम।
और बच्चों के लिए?
बच्चों के लिए चिकन सैंडविचेस, चिकन विंग्स, बीफ बर्गर और फ्राइज।
और मीठे में क्या होगा?
हाँ, पिस्ता आइसक्रीम, लाहौरी कुल्फी, लाहौरी कुल्फी फालूदा, रबड़ी, गुलाब जामुन और गाजर का हलवा।
कहाँ है ये लराची बाई नोमान एजाज?
10220 Derry Road, Milton. Reservation या order के लिए call करें
365-877-8252. Pinky, Bablu, चलो हम भी चलते हैं।
Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah.
مسلم ویلفیئر سینٹر دنیا بھر میں مستحق لوگوں کی مدد کرنے میں گامزن. ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلم ویلفیئر سینٹر کے ساتھ قربانی کیجیے یا پھر اپنا حصہ شامل کیجیے. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 1-866-754-3111 1-866-754-3111.
Save big, big bucks. Polystream Auto Glass, windshield repair and replacement. Small chip ho ya scratch, professional staff karenge aapki windshield repair minton mein. Wo bhi insurance claim ke saath. Special chip repair promotion of $60 only. Serving in Mississauga, Milton, Oakville, Burlington or Hamilton mein. For service call today 905-818-8472. 905-818-8472.
Ontario is open for business and pleasure. Let us celebrate life again. Come to TD Mosaic Festival and celebrate our art, our culture, and our cuisine. Let's meet on July 22nd and 23rd for the 17th Annual Mosaic Festival at Mississauga's Celebration Square and enjoy the award-winning festival with those who matter the most to you, your family and friends. Free admission and parking. More information, visit mosaicfest.com.
کیا آپ کو مارگیج کے لیے پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے؟ مارگیج ڈیلیجنٹ کے مکیش چوہان کین ہیلپ. ود 18 ایئرس آف ایکسپیرینس ان فائنینشیل انڈسٹری ہی اسپیشلائزز ان مارگیجز فار سیلف امپلائڈ. کال مکیش چوہان 6475127000. اور اگر آپ کو بیڈ کریڈٹ، کنزیومر پروپوزل یا بینکرپسی جیسے ایشو ہیں اور بینک نے ڈیکلائن کر دیا ہے، ویدر یو آر فرسٹ ٹائم ہوم بائر اور نیڈ ری فائنینس اور پرائیویٹ مارگیجز، کال مکیش چوہان 6475127000 FSRA 10252. Condition applies.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828 905-450-2828.
परिवार ही सब कुछ है. दुनिया भर में अब उनके साथ जुड़ना थोड़ा आसान हो गया है. अब जब आप सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर भेजते हैं तो विदेश में आपके प्यारे इसे उसी दिन अपने पास की मनीग्राम लोकेशन से नकद में ले सकते हैं, और ये सब बिना किसी ट्रांसफर फी के, ताकि आप अपने प्यारों को भेज सकें और ज्यादा. उनकी मदद करने का यही सही तरीका है. सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ परिवार कभी भी दूर नहीं. शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू हैं. cibc.com/cashpickup पर जाएं.
کیا آپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں انوالو ہیں اور آپ کو بہترین لائر کی تلاش ہے؟ ہیموفار پریزنس کی آپ کے لیے ایک جانا پہچانا لائر ہے, اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کے مسئلوں کو ان تک پہنچاتی ہوں. ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. کار ایکسیڈنٹ میں آپ کا مشورہ لینا آپ کا قانونی حق ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 416-570-0157. جی ہاں, 416-570-0157.
جی سامعین ناظرین, ویلکم ٹو ریڈیو ساز و آواز اینڈ ای آواز ٹی وی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و خیریت سے خوش و خرم صحت مند ہوں گے. بھائی ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ایز یوزول 9 بجے تک. جی ہاں, 9 بجے تک ہم نے آپ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. آج جمعۃ المبارک, جمعہ کا دن ہے, اور آپ July 1st. ہیپی کینیڈا ٹو آل آف یو. سارے ہمارے جتنے بھی کینیڈا میں لوگ بس رہے ہیں اور کینیڈین جو باہر ہیں, ان تمام کو ہیپی کینیڈا کہنا کی مبارکباد. 155th ایئر, 155 سال ہو گئے صاحب ہمیں کینیڈا میں. اینڈ مبارک ہو ساروں کو کینیڈا کی برتھ ڈے کا. اس کے ساتھ ساتھ آج جیسے میں بتایا آپ کو کہ July 1st ہے اینڈ جمعہ کا دن ہے, اور ہمارے محلے میں اس وقت ٹیمپریچر ہوا ہے صاحب 25 ڈگریز ٹیمپریچر. کچھ بارش کے امکانات ہیں, آج رات کو بھی کہتے ہیں کہ 17 ڈگری کے ساتھ کچھ بارش ہوں گی, اور پھر کل صبح ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی آنکھ کھلے گی تو 18 ڈگریز اینڈ نتھنگ بٹ سنی, پورا کا پورا سن نظر آئے گا آپ کو. اور اس کے بعد کی کہانی یہ ہے کہ کل دوپہر کو کچھ بارش کے امکانات ہیں, اینڈ 28 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا. संडे को अलबत्ता पूरा सनी है एंड 24 डिग्रीज टेम्परेचर. मंडे को हमने देखना है कि रेन टू एंड ऑन मंडे एंड 25 डिग्रीज टेम्परेचर. और ट्यूसडे को साफ, फिर कुछ बारिश के इम्कान हैं 24 डिग्रीज टेम्परेचर. जैसे मैंने हमेशा आपसे कहा है भाई, हमारी घास और पौधों को बहुत पानी की ज़रूरत है और बस बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, मगर कोई कड़क चमक के साथ बारिश नहीं हो रही है. तो हमारी दुआ है कि कुछ तेज़ बारिश हो जाए ताकि हम हमारे पौधों को, हमारी घास को ज़रा बारिश मिल जाए. ये तो बातचीत होगी टेम्परेचर्स की अब से लेके अगले 5 दिनों तक की. एंड एज जुमे के लिहाज से मैं हमेशा आपको सुनवाता हूँ साहब एक अच्छा, पहले ऐसा करते हैं कि सोनी धरती हमारी पाकिस्तान है और अब हमारी सोनी धरती जो है कनाडा है. जैसे हम कनाडा पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उसी तरह हम कनाडा से ही प्यार करते हैं. नहीं करते तो करना चाहिए हमें. शनाज बेगम की आवाज़ में एक, मेरे पास कोई कौमी नगमा कनाडा के लिए नहीं था तो मैंने कहा कि भाई आपको पाकिस्तान का कौमी नगमा कनाडा की बर्थडे के लिए सुनवा दूँ. जहाँ पाकिस्तान का ख्याल आए तो वहाँ कनाडा का भी ख्याल कर लीजिएगा. चलिए साहब समाप्त फरमाइए.
I don't want. रियल एस्टेट की दुनिया में काबिले भरोसा और बाएतमाद नाम
सहरिंग निरक्षण और हुमायूं खान।
अगर आप अपना घर बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं या किराए पे लेना और देना चाहते हैं या प्री कंस्ट्रक्शन में बहुत ही थोड़ी रकम से एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम आपको बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे पैसे बनवाने का तरीका बता सकते हैं।
तो देर किस बात की, फौरन कॉल करें टीम एचएस को, नंबर है 6476719249 6472055907।
स्प्रिंग में गार्डनिंग सीजन अब शुरू हो चुका है कैरेटन सब्जी फार्म पर।
हर तरह के फल फूल और सब्जियों की पनीरी, चाहे लेने हो करेले,
भिंडी,
चप्पड़ कद्दू,
टिंडा,
हलवा कद्दू,
रामतोरी,
पालक,
सरसों का साग,
धनिया,
लहसुन के बीज,
प्याज की पनीरी,
प्याज के बीज और हर तरह के गार्डनिंग टूल्स,
पतली,
रम्बा,
कई,
मिट्टी, खाद और पॉटिंग मिक्स।
एट कैलेडन सब्जी फार्म 9058409000 9058409000 12050 एयरपोर्ट रोड
कैलेडन, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड के कॉर्नर पर।
जी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, आपने समाज फरमाया। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदेद। आज 1 जुलाई और कैनेडा डे सेलिब्रेशन, मुख्तलिफ जगहों पे फायर वर्कस भी होगा। बाय द वे, जब इस फायर वर्कस का जिक्र हो रहा है तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नियाग्रा फॉल्स चंद इम्पॉर्टेंट जगहों के ऊपर एवरी सैटरडे और संडे थ्रू आउट द समर सैटरडे और संडे को फायरवर्क्स हुआ करता है। शायद आप लोगों के नोटिस में डेफिनेटली होगा, रात को 10 बजे ये फायरवर्क्स हुआ करता है कैनेडियन साइड पे भी और अमेरिकन साइड पे भी। नो मैटर के कोई खास इवेंट है या नहीं है, मगर ऑफ कोर्स टुडे इज़ अ स्पेशल डे और कैनेडा डे सेलिब्रेशन के लिहाज से। कितने लोगों ने लाल कपड़े पहने हुए हैं मुझे ये बता दीजिएगा। और ये कहते हैं टोरंटो कैंसल्स वन कैनेडा डे फायरवर्क शो आफ्टर वेंडर पुल्स आउट लास्ट मिनट। वो जिसने फायरवर्क सप्लाई किया होगा उसने मेरा ख्याल पुल आउट कर लिया, तो उसने कहा कि मैं नहीं सप्लाई करता,
तो क्या उसके बाद अब पैसों का मामला होगा कुछ। तो उसके फौरी बाद जो है उन्होंने जो है बहुत सारे वेंडर्स को किया, मगर एक दो उनको वेंडर्स मिल गए हैं लास्ट मिनट में, और जिसकी वजह से 3 जगह पे जो है आज फायरवर्क्स होगा और बाकी जगह पे नहीं हो सकेगा,
नहीं हो सकेगा। तो वो कहते हैं टोरंटो कैंसल्स वन कैनेडा डे फायरवर्क्स, तो बाकी जगहों पे होगा, एक जगह पे सिर्फ नहीं होगा। तो वेंडर ने एट दी 11th जब फायरवर्क्स की बात है तो साहब ये जो सड़कों के ऊपर फायरवर्क्स आपको मिलने लगे हैं ना, इसने प्रॉब्लम्स भी बहुत सी क्रिएट की है। आप इमेजिन कीजिएगा कि एक 14 साल का बच्चा, मैं एज अ पेरेंट्स क्या सोच रही हूँ कि एक 14 साल का बच्चा ट्रेन में आके फायरवर्क्स करता है और उसको चार्ज कर लिया जाता है, उसके रिकॉर्ड में तो सारी उम्र रह गया ना। तो आप फायरवर्क्स बेचने की आपको जरूरत ही नहीं है, इस मुल्क में आपको फायरवर्क्स बेचने की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट नीड फायरवर्क्स, बिल्कुल लाइसेंस नहीं होना चाहिए इन चीजों को बेचे जाने का। 14 साल का लड़का है, उसने उस चार्ज हुए आफ्टर फायरवर्क सेट ऑफ ऑन द गो ट्रेन इन टोरंटो, गो ट्रेन में इसने फायरवर्क किया और बच्चे का पूरा मुस्तकबिल जो है ना वो दागदार हो गया। गैस प्राइसेस आज 17 सेंट जो हैं वो ड्रॉप करेंगी। गैस प्राइसेस 17 सेंट, एक ना दो, 17
आज जो है वो 11 सेंट ड्रॉप हो चुकी है, और आज रात
इस वीकेंड पे
आज रात को जो है फिर 7 सेंट और। तो मैंने कल आपसे कहा था कि $5 का मैं डला लूंगा, तो $5 में तो मैं यहां से लेकर एग्रेंडे तक नहीं जा सकता, तो मैंने कहा थोड़ा सा और डला दिया, मगर आज फिर मैं आज रात को थोड़ा सा
17 सेंट,
कल yes. कल जाके 17 सेंट, 18 सेंट पूरा ऑल टुगेदर 18 सेंट की कमी होगी कल।
तो 11 सेंट ऑलरेडी हो गए, 7 सेंट का और होगा, 1 सेंट और होगा, मगर रात के वक्त प्राइसेस और भी ड्रामेटिकली कम हो जाया करती होती हैं। तो अराउंड बाय द एंड ऑफ द वीकेंड 17 सेंट गैस की प्राइसेस कम होंगी। और कोविड के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ साहब, प्रिकॉशनरी मेजर्स दीजिएगा। कोविड की शरह में इजाफा हो गया, कोविड की शरह में इजाफा हो गया। वन मैन डेड, वन इन पुलिस कस्टडी फॉलोइंग अ स्टैबिंग इन सेंट कैथरीन्स। यानी अगेन मैं पिछले वही बात है कि पीपल डोंट हैव रिटेंशन, याद रखने की हमारी कम है। मैं मेरा ख्याल है एक अरसे से یہ کہتی ہوں کہ ڈالر سٹورز کے اوپر آرمز نہیں ہونے چاہیے, پستول اور گنز کے ٹوائز نہیں ہونے چاہیے آپ کے کسی بھی جگہ پہ, واٹر گنز نہیں ہونی چاہیے یہاں سے بچوں کو روزانہ, گیمز پہ آپ کنٹرول کریں جن میں وائلنس دکھائی جاتی ہے, کیونکہ یہ صرف آنکھ کا حجاب اور خوف ہے, اور آہستہ آہستہ اگر وہ خوف ختم ہوگا تو پھر خون بہانا بھی آسان ہو جائے گا. سینٹ کیتھرینز میں ایک اور وہ کہتے ہیں جو سٹیبنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہے. مین اریسٹڈ آفٹر کار ایکسپلوڈیڈ ان فرنٹ آف اوشوا پولیس اسٹیشن. اب یہ کیا ہوا ماجد بھائی, اوشوا کے پولیس اسٹیشن کے سامنے گاڑی دھماکے سے اڑ گئی.
ہاں اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں,
انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یقیناً آپ کو اس کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. فائر ورکس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. پاکستان کی صورتحال کا ذکر کرتی ہوں تو پاکستان میں مہنگائی اپنی انجان پہ ہے. مفتی اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکا مگر یہ چار پانچ مہینے تک, بیکاز دے ہیو ٹو بائی دا ٹائم, ڈیڑھ سال انہوں نے ایسے ہی گزارنا ہے. یہ صرف ایک حکومت کا نہیں, ہر حکومت کا یہ قصور ہے. اس سے پچھلی بھی حکومت ساڑھے تین سال تک اپنے سے پچھلی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتی رہی. یعنی اگر ہم یہ بلیم کی سیاست کو ختم کرنے کے بعد کنسٹرکٹیو کام کرنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے ملک تبھی پروان چڑھ سکے گا. بائی دا وے اگر پچھلی حکومت کا ذکر ہوتا ہے تو یقیناً آپ نے ٹیکس کی کلیکشن کے بارے میں تو سن ہی لیا ہوگا. اس سے پچھلی حکومت جو تھی اس نے پچھلے سال میں ریکڈ ٹیکس ریونیو کو جمع کیا گیا تھا. مخیر لوگ جو ہیں وہ چاہے یہ معاشرہ چاہے کوئی بھی معاشرہ, مخیر لوگ پے نہیں کرنا چاہتے, مگر عام آدمی جو اس زد میں ہے وہ اس میں سے چھوٹ بھی نہیں سکتا. میں جب یہ ساری کی ساری آپ سے باتیں کر رہی ہوں تو بائی دا وے آج تین بج کے تھی, بہت سے لوگوں نے مجھے کال کر کے کہا جی آپ رعوف کلاسرا کو لے کے آئے. میں آپ کو کہتی ہوں بہت سے لوگ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ آپ ایز اے جرنلسٹ آپ کا جھکاؤ ہے کسی پارٹی کی طرف, تو میں اس کے لیے بھی مورد الزام ٹھہراتی ہوں اپنے لسنرز کو, نہ صرف اپنے بلکہ تمام جو براڈ کاسٹرز ہیں اور سو کالڈ جرنلسٹس ہیں ان کے جب بیانات سنتے ہیں تو اٹ از یو بلیم گوز آن یور شولڈر, آپ کو آپ مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے صحافی جو ہیں وہ ایک پلڑا اختیار کر لیتے ہیں. ایک ملاقات کی طرف لے کے چلتی ہوں, اس کے بعد میں آپ کو آگے لے کے چلوں گی. رعوف کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تین بج کے تیس منٹ پہ, آل دا وے فرام پاکستان لاہور, مگر اس وقت ایک ملاقات, اور ملاقات ہم آپ کی کرائیں گے محترمہ انجم قریشی سے. آج بھی جب میں اپنے گھر سے نکلی تو وہ ولیمس پارک وے پہ میں آ رہی تھی, اتنا کمال کا دن چڑھا ہوا تھا ولیمس پارک وے اور 410 جو ایگزٹ ہے وہاں پہ ایک شدید ایکسیڈنٹ دیکھنے کو ملا. اینڈ آئی تھاٹ واؤ اٹس 1st of July, لوگ اپنے گھر سے سیر کے لیے نکل رہے ہیں اور باہر باربیکیو کرنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو اس امتحان سے نہ نکال کے اچھا بھلا بندہ ہائی وے سے سالم سلامت نکل کے اس نے ایگزٹ لیا ہے اور دو گاڑیوں کے درمیان ٹکر ہو گئی. تو حادثات یقیناً ہماری زندگی کا حصہ ہیں, تبھی تو ان کو حادثات کہا جاتا ہے. ایکسیڈنٹ کے حوالے سے, کار ایکسیڈنٹ کے حوالے سے انجم قریشی کے نمبر کو ہینڈی رکھیے گا, بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اور صاحب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈیو ڈیلیجنس, مکمل طور پہ انفارمیشن حاصل کرنا, انفارمڈ ڈیسیشن کرنا. 416-570-0157 محترمہ انجم قریشی کا نمبر ہے. انجم السلام علیکم, کیسے ہیں؟
وعلیکم السلام, اور تمام سننے والوں کو بھی آداب, نمستے, ست سری اکال. اور آپ نے صحیح کہا کہ دن کتنا اچھا چڑھا ہوا ہو چاہے کچھ ہو, کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایکسیڈنٹ کب ہو جاتا ہے. اور ابھی آج خاص طور پہ جولائی 1st ہے, رات کو ڈرنک ڈرائیور روڈ پہ ہوتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایسے سیریس ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو بہت ہی مطلب بہت ہی عجیب و غریب وہ حادثات ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیشہ میرا نمبر اپنے پاس سنبھال کر رکھیں, کوئی بھی آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کو معلومات چاہیے, ایک لوائر آپ کے کام کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. اور لازمی بات ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لوائر آپ سے کوئی فیس نہیں لیتا, تو آپ بالکل اینڈ میں جا کے لیتا ہے بلکہ اپ فرنٹ نہیں لیتا. تو اگر آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ آپ کو قانونی مدد بھی مل رہی ہے, آپ کو ہر چیز آپ کو صحیح طریقے سے چل رہی ہے, اور آپ کو پیسے بھی آخر میں دینے پڑتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی قباحت ہے. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی, آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں, گائے بگاہے آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی ہوں. 416-570-0157 زندگی رہی تو ایسی ہی باتیں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے, اپنا خیال رکھیے گا.
بہت شکریہ انجم قریشی کا نمبر 416-570-0157 570-157 محترم انجم قریشی کا نمبر ہے، کیپ دس نمبر ہینڈی اور آپ ان سے ملاقات کر لیجئے گا، تمام معلومات حاصل کیجئے گا، اس کے بعد انفارمڈ ڈیسیجن لیجئے گا. 416-570-0157. آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان صاحب ایک صحافی ہیں جو کہ مختلف مواقع پر عمران خان ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کے حق میں بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کی جو بڑی اہم خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج تک جتنے پروگرام کیے ہیں ان تمام کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے صحافی عمران خان کے خلاف درج مقدمات کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا. اب یقیناً چارج شیٹ ہو جائے گی ان کے بارے میں، اس کے علاوہ کیا ہوگا، مگر اس ملک میں وقت ضائع کرنے کا یہی ذریعہ ہے. آپ پاکستان کو اور میں آپ پاکستان کو صرف مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. لیونگ ابراڈ فرام پاکستان سات سمندر پار، جب ہم اس سسٹم کی بات کرتے ہیں، اس ملک کی بات کرتے ہیں، مگر ہم میں سے اکثر لوگ بما میرے بہت سی چیزوں کے اوپر وہی اپنی پرانی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، آپ ٹھنڈے دل سے اس بارے میں سوچئے گا، وہ لوگ جو یہاں کینیڈا میں آئے ہیں اور کینیڈا کے معاملات کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، گورنمنٹ کی نئیونیس سے ٹیکس پیئر پیئنگ موڈ میں رہتا ہے، اور وہ لوگ جن کے دماغوں میں کرپٹ خیالات ہیں وہ اس کا فائدہ لے رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کس کو ضرب لگا رہے ہیں؟ اس سسٹم کو، اس سسٹم کو ہم ضرب لگا رہے ہیں. اینی ویز، یہ تمام بات چیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی، مگر میں آپ کے ساتھ، ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ان ممالک میں رہنے کی بہت سارے فوائد ہیں، مگر بہت سارے فوائد کے ساتھ چند ایک نقصانات بھی ہیں. نقصانات کیا ہے؟ آج کی ایک ریسرچ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یقیناً میری کوشش ہوگی کہ اس کو بہتر طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس جو ہم کھاتے ہیں، یعنی فلو ہو گیا، زکام ہو گیا، اس کے لیے ہم نے اینٹی بایوٹکس کو استعمال کیا. اینٹی بایوٹکس کے اگینسٹ ریزسٹنس کے بیکٹیریا پیدا ہو گئے. اب یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ سوروں میں پیدا کیے، پگز میں زیادہ پیدا ہوئے. اب اس کی وجہ کیا؟ ابھی تو صرف پگز کا ذکر آیا، باقی جانوروں کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ آج کل خوراک کی قلت کو پورا کرنے کے لیے، خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کے، خاص طور پہ مرغیوں، گائے، بکری، ان جانوروں کو ہارمونز بہت زیادہ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان جانوروں پہ انسان کا انحصار ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری انسان کی باڈی میں اینٹی بایوٹکس کے اگینسٹ ریزسٹنس پیدا کر رہا ہے. یقیناً اس معلومات کی طرف
کام نہیں کر رہا ہے. اینٹی بایوٹک، ایون اینٹی بایوٹک کھائیں آپ، ایک زمانہ تھا کہ جب چاہے جتنا بڑا گہرا زخم ہو اینٹی بایوٹک آپ کھائیں اور وہ زخم جو ہے وہ آپ کا فوراً ہیل ہونا شروع ہوتا تھا. بڑی بیماری بھی ہے، اینٹی بایوٹکس کھائیں اور اس سے فوری طور پر.
اچھا ماجد بھائی، مزہ پھر دوسرا مزہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم اور اس کا ڈائریکٹلی انہوں نے انحصار جو دیا ہے کہ سوروں سے، اور براہ راست نہیں، جب ہم وہ والا گوشت استعمال کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں بھی اثرات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آرٹیکل تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ خواتین، خاص طور پہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو چکن ونگز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کس لیے؟ کیونکہ چکن کو مرغیوں کو ان کی بیماریوں سے بچانے کے لیے ان کی بازوں، ان کے اگلے پروں کے نیچے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں.
عارفہ جی، بیماریوں سے بچانے کے لیے نہیں، ان کو جلدی بڑا کرنے،
بڑا کرنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے جو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں نا، مرغی کی کبھی ٹانگ میں اور پیٹ میں انجیکشن نہیں لگائے جاتے، مرغی کی بازو کا جو پر ہوتا ہے نا وہاں پہ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں. اب وہ استعمال جب کیے جاتے ہیں تو عورت کے جسم میں دا موسٹ سافٹ اینڈ امپورٹنٹ حصہ، اووریز میں اور یوٹرس میں جو فائبرائڈز پیدا ہوتے ہیں، عورتوں کے یوٹرس میں جو فائبرائڈز پیدا ہوتے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے ان ونگز کا اٹ واز اے گریٹ آرٹیکل جو میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ خاص طور پہ بچیوں کے لیے چکن ونگز کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح سے جیسے مردوں کے لیے ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، یار بڑی نویں گڈی لئی ہے، 2022 کی گڈی ہے، 2023 دا ماڈل بھی آ گیا سپتمبر دے وچ، ہیٹڈ سیٹاں تے ایڈی کمال دی گڈی ہے. آدمیوں کے لیے ہیٹڈ سیٹیں سب سے بڑا अलार्म, तो डू नॉट यूज हीटेड सीट्स. ठीक है, तो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वाला आर्टिकल है, स्टडी ने शेयर किया है. उसने कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बैक्टीरियाज जो हैं वो पैदा हुए हैं, MRSA इनको नाम दिया गया है, और ये खास तौर पे रिसर्चर्स ने पिग्स में इनका पाया गया है. ये न्यू स्ट्रेन ऑफ, अब अगली बात क्या है, शायद वक्त है, शायद स्टडीज इतनी ज्यादा हुई. स्ट्रेन जैसे आपने कोविड के नीचे देखा कि कोविड ने अपनी करवटें बदली और कोविड जो है उसके स्ट्रेन चेंज हुए हैं, इसी तरह ये जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ इसमें भी स्ट्रेन यानी उनमें म्यूटेटेड फॉर्म आ जाती हैं, म्यूटेटेड फॉर्म्स आ जाती हैं. तो साहब इन्फॉर्मेशन ये है, न्यू स्ट्रेन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फाउंड अमंग द यूरोपियन पिग्स इंक्रीजिंगली वॉन्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने कहा है कि इन पिग्स के गोश्त के ऊपर जब इंसान इन्हसार करते हैं तो इनडायरेक्टली ये बैक्टीरिया इंसान की बॉडी में आ जाते हैं, और ये बैक्टीरिया यानी किसी भी बीमारी के लिए जब आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एंटीबायोटिक इंसान के जिस्म के ऊपर असरअंदाज नहीं होती. एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल एट द एंड ऑफ द डे आपको मालूम होगा मेरे आपके लिवर के ऊपर असरअंदाज होता है. और हिस्टोरिकली हाई लेवल ऑफ द एंटीबायोटिक यूज मे हैव लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ दिस हाईली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ MRSA. और सो ये एक रिसर्च आई है जो ऑफ कोर्स जिंदगी में हम क्वालिटी लाइफ गुजारना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ कंसर्न जो मुझे आपके साथ शेयर करना था. यहां से मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ यूक्रेन. यूक्रेन में ना चंद ये हुआ, ये साहब के जर्मनी के चंद जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कंडेम किया है कि ये वॉर जो है खत्म हो सकती है, इस वॉर को खत्म हो जाना चाहिए. तो यूक्रेन की जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा गो टू हेल. उन्होंने कहा कि ये जो सो कॉल्ड एम्बेसडर्स जो यूक्रेनियन एम्बेसडर ने कहा, ये जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे राइटर्स और ये जो हैं अगर वो ये कह रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग. स्लैम्ड द सिग्नेचरीज ऑफ ओपन लेटर विच कॉल्स ऑन वेस्ट टू स्टॉप प्रोवाइडिंग यूक्रेन विद द वेपन्स. एक्चुअली ये जो एक टीम है इन लोगों की, इन्होंने कहा है कि वेस्ट को वेपन्स यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करने चाहिए और इस जंग के खात्मा होना बहुत जरूरी है. कईव के जो एम्बेसडर हैं बर्लिन में, उन्होंने इंसल्ट किया ग्रुप ऑफ जर्मन इंटेलेक्चुअल लोगों का, और वो इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने ये कहा है कि वेस्ट को कईव को और यूक्रेन को इस वेपन्स जो हैं प्रोवाइड नहीं करने चाहिए. रेफरिंग टू सम ऑफ द दीज बाय देयर लास्ट नेम, उन्होंने सजेस्ट किया शुड गो टू हेल विद देयर ये इस तरह की एडवाइस के मुताबिक. द ओपन लेटर विच यूक्रेन डिप्लोमेट वॉज पब्लिश्ड इन द जर्मन जो न्यूज़पेपर है उसमें छापा भी गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि गो टू द हेल. सिर्फ किस बात के ऊपर कि ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं इन्होंने कहा है कि इस जंग की बंदी का तरीकाकार सिर्फ यही होगा कि अगर वेस्ट मजीद असलाह फ्राहम करने से इनकार कर देगा. बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का. दो एक लोगों का जिक्र करना चाहती हूँ कि कुर्बानी के हवाले से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुस्लिम वेलफेयर सेंटर MW कैनेडा से ताउन कीजिएगा. मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा की मुख्तलिफ जगहों पर ब्रांचेज हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 3 ब्रांचेज हैं, बहुत से लोग इस फूड पर इंहसार करते हैं. आई हम्बली रिक्वेस्ट प्लीज मुस्लिम वेलफेयर सेंटर MWC कैनेडा पे आप राबता करके अपनी कुर्बानी का शेयर दीजिएगा. चांद रात का ईद मेला, देखिए साहब ईद कब आ रही है अभी कैलकुलेट किए देते हैं, हम 770s को कवर भी करेगा. चांद रात ईद मेला फ्राइडे 8 जुलाई को होगा, 8 जुलाई फ्राइडे, आज से 7 दिन के बाद होगा, शाम 6 बजे शुरू होगा. आप जानते ही हैं जनाब चिश्ती साहब को और सामियाज कलेक्शन की सामिया, दे स्टार्टेड ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल, फिर मार्कम में इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, और 8 जुलाई फ्राइडे का दिन बनता है 150 दिल्ली ड्राइव. ये वही जगह है जहां पे बहुत सारी स्टोर्स हैं, ये
कॉस्को
के सामने है। एक हम एडवर्टाइज भी करते होते थे, एक तो सामियाज कलेक्शन भी वहां पे है, एक और स्टोर बड़ा प्यारा था वो भी यहीं पे ही है, मैं भी उनके बारे में भी बता दी, बहुत खूबसूरत स्टोर्स यहाँ पे मौजूद हैं क्लोथिंग के। तो आपसे रिक्वेस्ट है, 8 जुलाई को ईद बाजार होगा दिल्ली ड्राइव पे, 150 न्यू दिल्ली ड्राइव इन मार्कम, और वो कहते हैं कि फ्रेश फिंगर फूड होगी, बेवरेजेस होंगे, म्यूजिक बिल्कुल साफ, मौसीकी का इंतजाम होगा, मेहंदी लगाने का इंतजाम होगा, कपड़ों के बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, ज्वेलरी होगी, फैशन, बालों को अगर आपने उस दिन बनवाना है, नेल्स बनवाने हैं, बाउंसिंग कैसल आपके बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट होगी, मेकअप सर्विसेज ऑफ कोर्स, अच्छा सा मेकअप एक दिन पहले करा के आ जाइएगा और फिर अगले दिन सारों को मिलिएगा। आप देखिए यहाँ पे क्रिज्मा कलेक्शन है, इस जगह पे मेला को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्रिज्मा कलेक्शन है, मिस फैशन है, आपाज किचन भी यहीं पे है, पोशाक महल यहाँ पे है, सिल्क कल्चर है, जेगन बुटीक है, कोहे नूर फैशन है, दर्जी है, और हलाल मीट भी है, कारीगर आपको याद है, कारीगर हमारे स्पॉन्सर हुआ करते होते थे, कारीगर भी यहीं पे है, किंग कश्मीर टी, कश्मीरी चाय पीजिएगा उस दिन, राजधानी स्वीट यहाँ पे है, अलीज ढाबा भी यहाँ पे है, 8 जुलाई को वी विल ऑल बी देयर ऑन 150 न्यू दिल्ली ड्राइव इन मार्कम। चलिए ये हुई, रऊफ क्लास्ट्रा साहब हमारे साथ होंगे, रऊफ क्लास्ट्रा साहब, उनके साथ बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ क्लास्ट्रा साहब का कि आपने हमको टाइम दिया, आज अब से थोड़ी देर के बाद वो हमारे साथ, ही इज ऑन द एयर, ही इज विद अस, ओह आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट नो। जनाब रऊफ क्लास्ट्रा साहब जर्नलिस्ट हैं, कॉलम लिखते हैं, मेजबानी करते हैं, ही इज एन एंकर एज वेल। रऊफ क्लास्ट्रा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं?
जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो में, आई एम ग्रेटफुल
सर, आपका बहुत शुक्रिया। देर आर टाइम्स के बाद लोगों को सोचता है इंसान कि इनको मिलना मुश्किल होगा, बहुत शुक्रिया जिन लोगों का ताबुन होता है। राणा सुहेल साहब से फिर मैंने रिक्वेस्ट की, मेरा कोई लीड प्रोवाइड करने वाला हिडन नहीं है, जिससे मैंने चीजें छुपानी है मैं उससे नहीं छुपा सकती, तो मैं आम बंदे से क्यों छुपाऊं सर। तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर सबसे पहले तो पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में, आप किसी से छुपे हुए नहीं है, और मैंने जो आपको आज अपने साथ एयर पे लिया है, मेरे बेशुमार लिसनर्स मुझे टेक्स्ट किया करते होते थे। अब उसकी दो वजूहात हो सकती हैं जो मेरी नज़र में आई, क्योंकि बहुत से लोग आके, जाहिर है हर गवर्नमेंट की अच्छाई बुराई होती है, उस हवाले से जब बात करते हैं तो वो पीटीआई की हुकूमत की तारीफ करते थे, शायद मुस्लिम लीग हुकूमत में बहुत सारी कोताहियां, और ये पीडीएम के बारे में कोताहियों का जिक्र करते थे, तो वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के हामी हैं उन्होंने शायद ये सोचा होगा नहीं जी ये फिर इसका मतलब है सारे ही पीटीआई वाले हैं। रऊफ क्लास्ट्रा साहब को लेके आइएगा, मगर हमारा काम है आपसे रिक्वेस्ट करना, आपकी एहसान मंद हूं कि आपने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया, आप तक पहुंचने के लिए राणा सुहेल साहब की शुक्रगुजार हूं। तो सर फरमाइए क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की, और खास तौर पर वी विल स्टार्ट फ्रॉम पंजाब जहां पर अब बाकायदा इलेक्शन होने जा रहे हैं फॉर द चीफ मिनिस्टर।
बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा इंट्रोडक्शन दिया, वेरी मीनिंगफुल, और मुझे कहने दें ऑन एयर कि आपसे जब बात हुई फोन पे इस ये शो के लिए, आप इंतहाई पोलाइट और इंतहाई डिसेंट पर्सन हैं, और बड़े अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, मस्त है इससे, मैं म्यूचुअली तौर पर वो नहीं कर रहा कि आप
नहीं सर, मुझे बिल्कुल ऐसा, आप बहुत ग्रेट इंसान है, आपका बहुत शुक्रिया, मैं तो कमजोर बंदा हूँ मगर मेरी हौसला अफजाई के लिए आपका सर बहुत शुक्रिया,
अच्छा लगा आपसे बात करके, वेरी पोलाइट एंड डिसेंट पर्सन है, मस्त है। और दूसरा ये मेरे लिए थोड़ी सी इसलिए भी हैरानी थी, हालांकि ये आती रहती हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, या ये कनाडा वगैरह में, उनकी होती है ख्वाहिश उनके रेडियो प्रोग्राम्स की या दीगर चीज़ों की, तो पिछले कुछ अरसे से मुझे ये इस एक आपका जब आया है कि लोग सुनना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ी सी प्लेजेंट से सरप्राइज भी हुआ, इन द सेंस के आजकल के हालात में लोग जो है ना वो अपनी बात सुनना चाहते हैं, जो उनको पसंद है, जो वो उनके जहन में है, आप वही गुफ्तगू करें तो सुनना चाहते हैं, और मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहा जाता है कि वो इमरान खान साहब से ज्यादा एक रोमांस मोहब्बत और एक तल्लुक फील करते हैं फॉर राइट रीजन, मैं ये नहीं कह रहा। तो मेरे जैसे कोई अगर थोड़ी सी कभी कोई बातें पॉइंट आउट कर भी देते हैं तो वो मतलब मैं उसमें कोई पॉपुलर बात नहीं कर सकता, सम टाइम ट्रेनिंग ऐसे ग्रूमिंग ऐसे जर्नलिज्म की या इसके जो भी कहें। सो मैं कुछ ज्यादा ये ओवरसीज पाकिस्तानी में पॉपुलर नहीं हूँ, तो ये मुझे एडमिट करने
दो। और मजे की तो बात है कि मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिपीटेडली, मैं अब कहती थी या अल्लाह मैं कहाँ से पकड़ूं, तो बल्कि मैंने राणा साहब को लिखा तो मैंने उनको कोई शायद साबिर शाकर लिख दिया, तो फिर मैंने कहा नहीं टेक्स्ट भेजा, कहते बाजी तू भी बस पागल है, ये साबिर शाकिर और ये रऊफ क्लासरा दीज आर टू डिफरेंट थिंग। आई सेड नहीं, रऊफ क्लासरा साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ, तो बहरहाल
उनके शुक्रगुजार हूं मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी को। और मुझे कहने थे दुनिया में मैं जहां भी जाते हैं, मैंने ये बातें लिखी भी हैं, बोली भी नहीं ऑलरेडी की हैं कि जितना कंसर्न और जितनी इस मुल्क से मोहब्बत मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी में देखी है ना, और जितने वो परेशान रहते हैं इतने हम भी नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि फेयर में आपको बताऊं एक उन्हें फील होता है जज्बा पैशन जो भी बंदा मिलेगा, अगेन एक अपनी लाइफ हो वो वहां पर एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन उनकी लाइफ इस वजह से जरूर डिस्टर्ब है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं ये उनको सोने नहीं देते, उनको चैन नहीं लेने देते। मैं और मेरे दिल में बड़ी इज्जत है उनके लिए, बड़ी मोहब्बत है कि वो अपने मुल्क से कितना एक पैशन और जज्बा और प्यार रखते हैं। खैर, आप कमिंग टू द पॉइंट जो आपने सवाल किया है, डेफिनेटली पिछले कुछ अरसे से स्पेशली मार्च के बाद मैं कहूँगा जब से तहरीक-ए एतमाद खान साहब के खिलाफ आई थी, एक पोलिटिकल टर्मायल है यहाँ पे, अनसर्टेनिटी है, एक एक एक, एक, एक उसके एस्टेब्लिशमेंट वर्सेज हमारी पॉलिटिकल फोर्सेज की जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें बड़ी क्लियर लाइंस यहाँ पे ड्रॉन हुई हैं। एक एक उसमें कहते हैं बैटल्स बैटल लाइंस हैव बीन ड्रॉन, तो उसका इंपैक्ट जो है हमें पहले सेंटर पे नजर आया, इस्लामाबाद में नजर आया, बहुत बड़ी एक इंतहाई आपको तो पोलिटिकली तौर पर खौफनाक लड़ाई लड़ी गई, वो सारे लोगों को पता है, मैं उसमें रिपीट नहीं करना चाहता। अगला जो मैदान था जो पंजाब की आपने बात की, मैं हमेशा कहता होता हूँ पंजाब जो है वो कि पानीपत है इसके लिए, पाकिस्तान के लिए, जैसे पानीपत तो उसके दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट था कि अगर आपने दिल्ली फतह करना है तो बाहर से जितने भी हमलावर आते थे जंगजू आते थे तो उनकी आखिरी लड़ाई जो है वो दिल्ली के बाहर उसमें होती थी, पानीपत के मैदान में होती थी, जो पानीपत की जंग जीतता था वो दिल्ली पे रूल करता था। तो सेम इज अगेन ट्रू अबाउट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कि अगर आपने आके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करने इकतदार पे आपने आपके एक उस पर रूल करना है पाकिस्तान में, तो पंजाब में या आपकी हुकूमत भी होनी चाहिए, आपके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर आपके पास वहां पे वोट बैंक होना चाहिए। अगर आप इसको नवाज लीग को देख लें पिछले इसके 40 साल से पॉलिटिक्स है तो मोस्टली इनके पंजाब इनके पास है, पानीपत उनके उनके कब्जे में है, और वो जब भी चाहते हैं उनको मौका मिलता है तो पावर में आ जाते हैं सारे के सारे, आपको पता है सारा। सो जब तक इनको नहीं मिलनी थी पंजाब में हुकूमत, अब उस पर दोनों साइड उस पर एफर्ट कर रही थी, उसमें इमरान खान साहब की भी कोशिश थी कि अगर मैंने इनको आके नहीं चलने देना शहबाज शरीफ साहब के सेंटर की हुकूमत को तो मेरे पास वहाँ पंजाब होना चाहिए, पंजाब अगर मेरे पास आ गया फिर मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप अपने पास सेंटर रखें जो रखना चाहते हैं आपकी मर्जी। अच्छा, ऐसे ही शरीफ खानदान को पता था कि अगर हम यहाँ पे नहीं लेकर आते इसको, यहाँ पंजाब हमें नहीं मिलता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा रूल करना, और हमारी जितनी पोलिटिकल हमारी जितनी एफर्ट्स हैं ये नाकाम हो गई। और इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं बताऊँ कि मेरी जब यहाँ पे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ये बने शहबाज शरीफ साहब बने थे या वजीर आजम बने, तो ये सवालात मैंने उनसे किए थे जब उन्होंने सहाफियों को बुलाया, एंड और बड़े सख्त सवाल थे, और भी दोस्तों ने पूछे, ये नहीं कि मैंने किए लेकिन एक मौका मिला था तो मैं कि पूछ लेते हैं, तो मैंने ये बात उनसे की थी जिसको बाद में आपके सामने प्रॉब्लम है। मैंने इन्हें कहा था मैं कि आप पे भी केसेज हैं, आप नैब के मुलजिम रहे हैं, उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं उन पर नैब के केसेज हैं, वो जेल में रहे और दूसरा बाप बेटे हैं, तो ये चीजें ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं होंगी, आप लोगों के सीरियस इल्जाम हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि शरीफ खानदान से बाहर जो है कोई आपके पास कोई बंदा नहीं है, और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो वहां पे आपकी जगह वजीर आजम बन सकते थे या वहां पे वजीर आला बन सकते, तो ऑल इन ए फैमिली, ये सवाल पूछा था मैंने उनसे, तो उसमें अच्छे खासे 30-40 हमारे जर्नलिस्ट बाकी दोस्त भी बैठे थे, वजीर भी बैठे थे, तो उस पर उन्होंने अपने खैर जवाब दिए, तो वो ये कहने लगे कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे उन पर भी तो केसेस थे, उसमें गिलानी साहब थे, इमरान खान साहब थे, या राजा परवेज साहब थे, तो इन पर भी जमानत पे, तो मैं भी जमानत पे, जब केस का फैसला होगा देखेंगे। हमजा शहबाज शरीफ साहब को जब उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि ये देखेंगे कि हम तो गए थे उनको वजीर आला बनाने के लिए परवेज अली साहब को, लेकिन परवेज अली साहब जो है हमारे साथ डील करके दुआ खैर करके वो बाद में मुकर गए, हमने तो मिठाई के टोकरे भी आके एक्सचेंज कर लिए थे। सो उन्होंने कहा और ऑप्शन नहीं था। हैविंग सेड ऑल दिस, ये उनकी बड़ी बैड मूव थी हमजा शहबाज को वहां पर चीफ मिनिस्टर लेके आना, और उन इमरान खान साहब ने बड़ा वाइजली जो है उन्होंने बुज़दार साहब को पीछे करके परवेज अली साहब को कर दिया कि अगर टक्कर मुकाबले की होगी ना, एक तरफ जहां चौधरी हैं तो एक तरफ वहां शरीफ खानदान है, दोनों ने पंजाब की पॉलिटिक्स को 40-50 साल से इकट्ठे दोस्त भी रहे हैं, पार्टनर्स भी रहे हैं, बाद में उनकी मुखालफतें होंगी ये, क्योंकि अब जो होना था मार धाड़ के साथ वजीर आला बनना था। सो हमने जो पिछले कुछ 1.5-2 महीने देखा है इससे पहले जो असेंबली में हुआ है, तो मार धाड़ के जरिए ही चीजें की गई हैं और एक दूसरे के खिलाफ पावर यूज की गई है, और अल्टीमेटली आज मैं इसको कंक्लूड करूंगा, थोड़ी सी बात लंबी होगी कि आज जो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा भी है, क्रेडिट लिया है कि जो 3 महीने से क्राइसिस आपसे सियासतदानों से हल नहीं हो रहा था तो हमने 3 घंटे में हल कर दिया है, तो इससे बिग स्लैप अगर मुझसे पूछे हम द फेसेस ऑफ द पॉलिटिशियंस, कि हमें तो बताया जाता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटीज, कि आप बैठते हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटीज दिखाते हैं, और सियासतदान बड़े अच्छे होते हैं, मेच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, गिव एंड टेक करते हैं और ये मसले अपने हल कर सकते हैं, लेकिन अब हमें फील हुआ नहीं, आप अल्टीमेटली फिर भी वहां पे 5 जजेस के पास जाना पड़ता है, आप लाखों वोट लेकर आए, करोड़ों वोट लेकर आए, आप लाख कहते रहे हम लोगों के नुमाइंदे हैं, हम बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो आपको उन 5 उनके पास जजेस के पास जाना पड़ता है, उनकी मान ली है, जरी मजे की बात सुने, 5 जजेस की उन्होंने मान ली है, उन्होंने जैसे हुक्म दिया उन्होंने जैसे माई लॉर्ड जैसे आप कहते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे, मतलब मुझे हंसी आ रही थी कि ये चीजें आप बैठ कर आपस में भी सेटल कर सकते हैं, फिर कहते हैं अदालतें हमारे कामों में मुदाखलत करते हैं, इदारे हमारे कामों में मुदाखलत करते हैं, देखें लीजिए हमारा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को ग्रैब करते हैं और हमारे आके एनक्रोच करते हैं, तो भाई साहब एनक्रोच की इजाजत कौन दे रहा है, आपने उन लोगों की बात मानी है, मतलब उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ठीक मानी है, मतलब माननी चाहिए आपको, लेकिन आप खुद जो करोड़ों लाखों लोगों के नुमाइंदे खुद को कहते हैं, आप में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि बैठ के ये तय करने, ओके सर हम उसके पास 17 को इलेक्शन हो जाएंगे, ये जिमनी हो जाएंगे, हमारे कोई बहर कोई लोग गए हुए हैं वहां पे, कोई हज करने गए हैं, कोई पाकिस्तान से बहर है, कोई फैमिली कमिटमेंट है, तो लेट्स डू इट आफ्टर इसके ईद के बाद कर लेते हैं, इलेक्शन के बाद। तो मुझे थोड़ा सा इस पे दुख भी है, टू बी फेयर, खुशी भी है कि चले कोई क्राइसिस हल हुआ है, किसी साइड पे उस कश्ती लगी है, लेकिन दुख भी है कि हमारे बड़े बड़े नाम, वो कहते हैं ना एक आता ऊंची दुकान फीके पर, ये उसके फीके पकवान झूठे रूप के दर्शन वाला काम है, क्या आप इतने बड़े नाम बिग नेम्स बातें इनकी सुने, टीवी पे सुने, पार्लियामेंट में सुने, संभाले नहीं जाते हमसे, हालत ये है कि इनको जाना पड़ता है हर दफा अदालत में कि भाई साहब हमारी सुलह करवा दें, हमारे दरमियान बिठा के तो फैसला करवा दें।
सही सर, मेरा 2-1 कंसर्न्स हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, आप जिस एंगल से देख रहे हैं पॉलिटिक्स को इन पाकिस्तान। पहली बात तो ये कि चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो, इस मेरी साख जो है ना वो लिंक्ड है मुल्क की साख के साथ, यानी मैं अपने आप को मुल्क से अलग नहीं कर सकती। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो पार्टियां जो कभी आज तक एक पेज के ऊपर इकट्ठी, इससे पहले भी एक दफ़ा ये इकट्ठी हुई थी परवेज मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट, और 4 दिन के बाद ही भांडा जो था वो चौराहे में आके फूट गया था, अब फिर वो सारी की सारी पार्टीज इकट्ठी हुई हैं और एक जगह पे चलने की कोशिश कर रही हैं, और इसी जुमरे में मैं इलेक्शन का भी जिक्र करूँगी। वेरी अनफॉर्चुनेट कि जर्नलिस्ट, आर्मी, पॉलिटिशियंस क्यों महसूस नहीं करते कि अगर हम थोड़ा थोड़ा अच्छा चलने देंगे तो मुल्क के साथ साथ हमारा भी, बजाय इसके कि आप मुर्गी को ज़िबा कर दें, आप बेहतर है कि मुर्गी को भी रखें, फ़ायदा भी लें, मुल्क की इज्जत भी रहे। मगर पाकिस्तान में ये तीनों मामले, चाहे वो आपके जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की आराम मुख्तलिफ मिलती है, चाहे वो आप अपने पॉलिटिशियंस की बात कर लें, और चाहे आर्मी इज ऑलवेज विद पाकिस्तान, जनरल बाजवा साहब ने जरा एक्सट्रीम कदम उठाए, वो भी वल्लाह आलम बिस्सवाब के अंदर की क्या सूरत हाल है, मगर जब हम बाहर से तमाम सूरत हाल को देखते हैं तो मखदूश सूरत हाल नजर आती है। तो क्यों इतनी सेल्फिशनेस है कि एक वो जो कि पाकिस्तानियों को इन्फॉर्म कर रहे हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं अपने जाती मफादात, या आई डोंट नो मैं क्या नाम दे सकती हूँ उसको, पॉलिटिशियन अपने जाती फायदे के लिए दे आर रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर दैट, और बाजवा साहब ने तो फिर वाज़े तौर पे मुझ जैसा नालायक इंसान यही समझता है, इट इज द प्रेशर बाय अ फॉरेन फोर्स जो कि इस वक्त का फिर ऑन अपने आप को समझती है। तो क्या फरमाएंगे यहाँ आप, क्यों हम अपने घर से खुद सिंसियर नहीं है?
آپ نے بڑا اہم اور بڑا مشکل سوال کیا ہے مجھے, مطلب لیٹ می ایڈمٹ ان دا اسٹارٹ, مشکل سوال ہے لیکن بڑا اہم سوال ہے, اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, اس پہ بات ہونی چاہیے. ایک تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, آپ لوگ سارے پڑھے لکھے ہیں جو بات سن رہے ہیں مجھ سے بہتر آپ چیزیں اس میں جانتے ہیں, بہتر ڈیموکریسیز میں بیٹھے ہیں, بہتر جگہوں پہ ہیں جہاں پر ان کے یہ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہم سے پاکستان میں بیٹھے لوگوں سے بہت زیادہ اچھی آپ لوگوں کی. ایک چیز اگر جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ پاور جو ہے نا پالیٹکس, جو لوگ کہتے ہیں نا, جو بندہ یہ کہتا ہے جی مجھے اپنا وزیر اعظم بنا دیں, مجھے اپنا وزیر بنا دیں تو میں آپ کی زندگیاں ٹھیک کر دوں گا, یہ مطلب اس میں تاریخ میں ہوتا آیا ہے کہ کوئی یہاں پہ یہ جو یہ پولیٹیشینز ہوتے ہیں یہ ریولیوشنز نہیں ہوتے, یہ ریڈیکلز نہیں ہوتے, ریفارمرز نہیں ہوتے, یہ پاور گریبر ہوتے ہیں.
کیا
پاور چاہیے ہوتی ہے انہیں, یہاں پریولیجز چاہیے ہوتے ہیں, آپ کے ٹیکس کے پیسوں پہ انہوں نے عیاشیاں کرنی ہوتی ہیں, انہیں مفت کی گاڑیاں چاہیے, مفت کے ٹریول چاہیے, مفت کی رہائشیں چاہیے ان کو, ایون میڈیکل ان کو علاج جو ہے وہ بھی مفت کا اسٹیٹ کا یا ہمارے جو ہمارے وہ ہیں یہ اس پہ ٹیکس پیئر ان کے پیسوں سے مل رہا ہے. ابھی دیکھ لیں پیٹرول کی قیمتیں ہمارے یہاں بڑھی ہیں, اگر تو میں اپنی جیب سے پیٹرول خریدتا ہوں, پاکستان کے سارے لوگ اپنی جیب سے تنخواہوں سے پیسے,
پولیٹیشین نہیں خریدتے, آپ کے ججز نہیں خریدتے,
نہیں خریدتے, بالکل نہیں خریدتے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ حوالہ میں دے چکا ہوں, آپ کو یاد آ جائے گا کہ انہوں نے اوباما سے ایک پریزیڈنٹ سے انہوں نے انٹرویو کیا تھا کسی اینکر نے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے, تو باتوں باتوں میں کہنے لگا اس نے کہ آپ تو بڑے مزے میں ہوں گے کہ دیکھیں یہاں پہ مفت کے وائٹ ہاؤس میں رہتے ہو, کھانے کھاتے ہوں گے, جیسے ہوں گے, جیسے اس نے کامنٹ کیا, یہ پڑا ہوگا یوٹیوب پہ,
پیسے پے کرتے ہیں.
اس نے کہا ہولڈ آن, ہیلو ہیلو ہیلو, رکو رکو, یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ میں یہاں پہ بڑے میں عیاشیاں کر رہا ہوں اور میں یہاں کھانے کھاتا ہوں یا پارٹیز کرتا ہوں اور میرے حساب سے یہ مفت ملتی ہے؟ اس نے کہا جناب میری تنخواہ میں سے میری بیوی مشیل جو ہے وہ باقاعدہ گروسری کرتی ہے, پیسٹ اور جوسز تک بھی وہ جا کے, اس نے کہا جو ہم مہمان نوازی کرتے ہیں یہاں پہ وہ میری تنخواہ میں سے ملتا ہے, مجھے کوئی فری لنچز نہیں ہے, کوئی فری مجھے یہاں فیسلٹیز نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب بل کلنٹن پہ وہ آیا تھا, مونیکا لوئنسکی کا کیس آیا تھا, اس کے بعد ان کو وکیل جو کرنے پڑ گئے تھے وہ جیب سے کرنے پڑ گئے تھے, اور جب وہ اسے گئے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس سے, $8 to $10 million کے مقروض تھے بل کلنٹن صاحب, اور انہوں نے بعد میں لیکچر دیے, جو بھی کیا کتابیں وغیرہ لکھ کے اپنے انہوں نے خرچے پورے کیے. اور پاکستان میں جو یہاں سے نکل کے جاتا ہے, وہ پریزیڈنٹ ہو, وہ پرائم منسٹر ہو, وہ وزیر ہوں, وہ یہاں سے ملٹی ملینئر بن کے نکلتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کوئی یہاں سے پرائم منسٹر یا صدر, ان پہ بھی کیسز ہوتے ہیں, انہوں نے جناب آگے اسٹیٹ کے وکیل یوز کریں گے, وہاں سے پیسے دلوائیں گے, آپ کے میرے پیسے سے پیسے دلوائیں گے. سو وہ یہاں پہ ایک اس میں تھن لائن ہے. اور یہ بات آپ لوگوں کو جو بہر بیٹھے ہوئے ہیں, جب آپ اپنی ڈیموکریسیز دیکھتے ہیں, کینیڈا کی دیکھتے ہیں, آپ اس کے بعد امریکہ میں دیکھتے ہیں, یا برٹن یا وٹ ایور یہاں پہ یورپین کنٹریز میں جو ہائی مارل گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں, پھر آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جو تکلیف آپ کے سوال میں مجھے نظر آئی ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہمارے یورپ میں ہو سکتی ہیں, ہمارے کینیڈا میں ہو سکتی ہیں, ہمارے امریکہ میں ہو سکتی ہیں, تو پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں پہ یہ کام کیوں نہیں کرتی, وہ کیوں نہیں اپنی یہ تنخواہ میں گزارے کرتی؟ مطلب میں 250 liter پہ اپنا پیٹرول لے رہا ہوں, لیکن جو منسٹر ہے یہاں پہ وہ مفت میں لے رہا ہے, اور اس کو 600-700 liter مفت میں مل رہے ہیں, اس کو گاڑی بھی مفت میں ملی ہوئی ہے, اس کو کچن بھی ملا ہوا ہے.
غدر ہے سر.
صرف یہاں تک یہ نہیں ہے, ان کے ڈرائیورز, ان کے کک, ان کے مالی, ان کے نام پہ, اور یہ سٹوریز ہم نے کی ہوئی ہیں کہ ان کو ڈسکریشن, ان کو فنڈ ملتا ہے, سواب ڈیوٹی فنڈ ہوتا ہے 10-20 lakh rupees ہر منسٹر کو ملتا ہے. یہ غریبوں میں ایسے کوئی لوگ آ جاتے ہیں سم ٹائم اپنے علاقے میں, آپ ہیلپ کرتے ہیں, آپ یقین کریں گے ڈاکومنٹس کے ساتھ اسٹوریز کی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے گھر کے ملازمین کے نام پہ لاکھوں روپئے جو سواب ڈیوٹی فنڈ تھے وہ ان کو اپنے گھر کے ملازمین کو دے کے ان سے پیسے لے لیے. یہ اس طرح کے کیسز
آپ نے بڑا پیاری طرف مجھے لے کے گئے ہیں. میں دو تین میرے دماغ میں کھچڑی پکی ہوئی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, اور مجھے اللہ کرے کہ میری وہ تشنگی اور میرے ساتھ میرے اور لسنرز کی تشنگی بھی وہ ختم ہو جائے. ابھی آپ نے کہا کہ ان کے ملازمین کو بھی دیکھ لیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کل ایک تصویر دیکھی جس میں ہمارے جنرل باجوہ صاحب کو آنر کیا گیا, جناب شاہ عبدالعزیز ایوارڈ دیا گیا. اور جب میں خوشی میں ہوتی ہوں جو یا غم میں ہوتی ہوں تو میری کان کی لون تک, میرے ماتھے سے, آپ اگر میں زبان سے نہیں بھی بولوں گی تو آپ کے فیس ایکسپریشنز جو ہے نا وہ کچھ چیز ظاہر کرتے ضرور ہیں. تو میں وہ تصویر دیکھ رہی تھی جس میں محمد بن سلمان جو تھے ان کو وہ کنگ عبدالعزیز ایوارڈ, ہائیسٹ ایوارڈ دے رہے تھے, تو آئی کوڈ سی دی گلٹ آن ہز فیس. यानी अ जर्नल एंड अ पॉलिटिशियन और एन अ जज जब वो ओथ लेते हैं तो वो बहुत बड़ा ओथ लेते हैं कुरान को सामने रख के कि मैं आईज एंड ईयर्स रहूंगा, सन्सियर रहूंगा, कोई जो दुश्मन का हाथ इसकी तरफ आएगा मैं उसके अगेंस्ट काम करूंगा। तो बाजवा साहब का वो मुझे गिल्ट महसूस आया। तो क्या बात है, एहसास नदामत खत्म हो गया है या हमारा कॉन्शियस मर गया है कि पॉलिटिशियन या कोई भी शख्स जब वो गलत करता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान के बाहर भी है, तो क्या उसका जमीर उसको झंझोड़ के इजाजत, वो जो बेदारी जमीर है वो अब नहीं रही?
बड़े ये सवाल जो आपका है वो पाकिस्तान के डिलेमा को उसको डिपिक्ट करता है, जो मॉरल क्वेश्चन आपने उसमें रेज किया है। हमें दो तीन चीजें समझनी चाहिए मेरा ख्याल है जो रियलिटी बेस्ड है, कि पाकिस्तान जो है ये तीन चार मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखे बगैर हमारे लिए मुश्किल होगा। वो चार मुल्क जो मुझे समझ में आते हैं कि हमारे उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो ठीक होने चाहिए, अगर हमने अपने आप को वो रखना है जो हमारी मतलब फॉरेन पॉलिसी इसी पे चलती रही है, अच्छी थी बुरी थी। आपको सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात रखने हैं, आपको जो कुछ भी हो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बड़े जरूरी हैं, अमेरिका के साथ आपको ताल्लुकात रखने हैं ये बड़े जरूरी हैं आपके साथ, उसकी और बड़ी रीजंस हैं, आपको चाइना के साथ आपको ताल्लुकात रखने हैं। ये तीन ममालिक जो हैं, अब आप इनमें कैसे बैलेंस करते हैं दैट्स अनदर स्टोरी, कि चाइना और अमेरिका के क्या इशूज हैं या सऊदीज के उनके ईरान के साथ या बाकी उसके कतर वगैरह के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये तीन ममालिक जो मुझे समझ आती है माई ओपिनियन ये पाकिस्तान के लिए बड़े जरूरी हैं वन वे द अदर। अब इनमें से 19-20 आगे पीछे होते रहते हैं, हम इनको कैसे मैनेज करते हैं। सो पाकिस्तान के साथ हमेशा ये जो उन्होंने डील किया है सऊदीज ने, वो उन्होंने आके पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ या पाकिस्तान के DGISI के साथ किया, ये आज की बात नहीं कह रहा है, आप उठा के देख लें। उसके बाद ये जो मेरे ख्याल भट्टू साहब वाज़ द लास्ट वन जिनके साथ उनकी उनकी शाह फैसल की और उनके दीगर लोगों की बड़ी एक अपनी बन गई थी, एक तल्लुक बन गया था। अदरवाइज जनरल ज़िया के दौर के बाद, अफगानिस्तान की जंग के बाद, उसमें सऊदी अरेबिया का साथ जाहिर है, उसमें बड़ी फंडिंग थी, बहुत बड़ा रोल था, तो हमारे जितने DGs थे उसमें जनरल ज़िया साहब थे, या बाद में आने वाले सालों में सऊदीज ने बड़ी उसमें ये फंडिंग भी की पाकिस्तान को, स्पेशली अगर आपको याद हो जब 98 में हमने या न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे पाकिस्तान पे, पाबंदियां लगी थी और हमारा इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया गया, तो उस वक्त सऊदीज ने $3-4 billion के करीब उन्होंने फ्री आयल दिया था, तो बड़े अच्छे चलता रहा था मेरे ख्याल 2012-13 में जाके उन्होंने फैसिलिटी विदड्रॉ की थी। सो वो उनको जब भी जरूरत रही है, पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, हमेशा उनके डायरेक्ट रिलेशनशिप रहे हैं। और यही वजह थी जब इमरान खान साहब आए तो आपको याद होगा उस वक्त भी जनरल बाजवा साहब गए थे, उनसे MBA से मिले थे और वहीं से इनको एक इनको पैकेज भी मिला था $6-8 billion के करीब का, उसमें अगेन इनकी मुलाकातें हुई थी। अच्छा फिर दरमियान में तुर्की की वजह से हमारे प्रॉब्लम हुए तो वो भी रोक ली गई थी। सो एक उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब को, उस वक्त जनरल फैज थे, ये गए, फिर इन्होंने किंग से मुलाकातें की, फिर MBA से मुलाकातें की तो पैसे वगैरह वहां से रिलीज हुए। अभी रिसेंटली अगर आप देख लें तो फिर वो जो सऊदीज ने अपने अपने पैसे जो है वो किए हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको कोई हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह या कुछ पैसे वगैरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके अकाउंट में रखवाते हैं,
4% इंटरेस्ट पे दिए, 4% इंटरेस्ट पे
वही उसी पे, और साथ में बड़ी उन्होंने टर्म्स में लगे, शरायत भी बड़ी सख्त है जो IMF से या उससे को क्या कहते हैं, उन्होंने ज्यादा महंगा कर्जा दिया उन्होंने चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं, वहां से खबरें भी आई हैं सऊदी से, कि आप कोई अपने पैरों पे भी खड़े होंगे या हर दफा जो भी आएगा या पाकिस्तान में वजीर अजम बनेगा पहला काम यही करते हैं सऊदी अरेबिया, उसने जाकर उमरा भी उसने करना होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना वो जरूरी है, बड़ा जरूरी है, लेकिन साथ में उसने जाकर कुछ मांगना भी होता है, ये पिछले कई सालों से हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अब हम थक गए हैं, तो मेहरबानी फरमाएं, UAE ने हाथ खड़े कर दिए, कतर ने किए, चाइना कह रहे हैं कि कब तक आप लोग अपने पैरों पर खड़े होने की बजाय कुछ अपना को सिस्टम ठीक करें, और हम भी तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं ना, क्योंकि सऊदीज भी तो बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, वहां भी रेजिस्टेंस है ना MBS को, कि वहां पे बहुत सारे जो कंजर्वेटिव जो एलिमेंट्स हैं वो उनके रिफॉर्म्स के खिलाफ हैं कि आप शायद इतना ओपन कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन इवन देन वो कहते हैं अगर हम ओपन नहीं करते तो फिर आपके आने वाले 15-20 सालों में तो आप लोगों को हशर हो जाएगा, क्योंकि तेल की मार्केट तो बड़ी तेजी से कम हो रही है, उसके अल्टरनेट आ रहे हैं, अल्टरनेट एनर्जी इतनी ज्यादा आ रही है, हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं। सो हैविंग सेड ऑल दिस, जब आप लोग हर दफा पाकिस्तान का चीफ जाएगा, पाकिस्तान का DG जाएगा, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाएगा, वो पैसे मांगेंगे, वो पाकिस्तान के लिए वहां पे आके कुछ पैकेजेस मांगेंगे, तो उस डेफिनेटली उसके बाद कोई फखर की बात तो नहीं रहेगी कि मैं किसी से पैसे मांगने जाऊंगा और मुझे पता है कि पैसे मैं अपनी जाति जेब के लिए भी नहीं मांग रहा, मुल्क के लिए मांग रहा, जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कहीं से पैसे मांगने में। तो वो जो बात आप कह रहे हैं गिल्ट वाली, इट्स ए कलेक्टिव गिल्ट।
बहुत शुक्रिया, سر ابھی آپ نے جب روف کلاسٹر صاحب, میں سب سے پہلے اگین ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کی موجودگی کے لیے ہمارے ساتھ, مگر بہت ساری چیزیں اٹس پاکستان کی جو صورتحال ہے, آف کورس اٹس اے اسٹریٹجک پوزیشن آف پاکستان جس نے پاکستان کو اتنا امپورٹنٹ بنا دیا, سعودی عربیہ ایز اے ٹاؤٹ جو رول پلے کر رہا ہے اس رول کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ظاہر ہے میں تو ارد گرد کے حالات کو دیکھنے کے بعد ہی یا تاریخ کا مطالعہ کر کے ہی ہم آج کے حالات کا کنکلوژن نکال سکتے ہیں. آپ دیکھیے گا جمال خاشقجی کے قتل کے بعد سعودی عربیہ اور ٹرکی کے درمیان اتنی بری رفٹ آئی تھی. ٹرکی سعودی عربیہ اور جب سے بائیڈن آئے تھے سعودی عربیہ اور امریکہ کا یا بائیڈن کا تعلق بھی اتنا بحال نہیں ہوا تھا. انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اسرائیل کو وہاں فٹ کر دیا جہاں وہ چاہتے تھے, یونائٹڈ عرب امارات ان کے ساتھ لگ گیا. مگر ابھی ریسنٹلی دورہ کیا آپ کے جو بائیڈن صاحب نے سعودی عربیہ کے لیے بھی روانہ ہوئے, زندگی کی پہلی فلائٹ جو ہے وہ اسرائیل سے سعودی عربیہ کی طرف بھی گئی, اور وہ اتنی بڑی رفٹ جو بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ٹرکی تھی جمال خاشقجی سے متعلق, جمال ایم بی ایس نے ٹرکی کا دورہ کر لیا. ریزلٹ کیا نکلا؟ ان تمام چیزوں سے پہلے ٹرکی ویٹو کر رہا تھا فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو کی ممبرشپ کو. امریکی وزیر خارجہ جاتے ہیں, جو بائیڈن ملاقات کرتے ہیں سعودی عربیہ سے بھی کرتے ہیں, ٹرکی سے بھی کرتے ہیں, سعودی عربیہ ایز اے تھرڈ پارٹی بیچ میں